नमस्कार मित्रों और भाइयों, मैं डॉक्टर बॉब थील कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड की ओर से बोल रहा हूँ। आज मैं यीशु की माता मरियम के बारे में बाइबल और ऐतिहासिक सत्यों पर चर्चा करना चाहता हूँ। लोगों ने मरियम के बारे में तरह तरह की बातें सुनी है। रोमन कैथोलिकों के कुछ विचार है, मुसलमानों के कुछ विचार है, प्रोटेस्टेंटों के कुछ विचार है, लेकिन क्या वे सही है, क्या वे सटीक है? खैर, मरियम का जिक्र मुख्य रूप से सुसमाचारों में मिलता है। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक में भी उनका उल्लेख है। कुछ लोग बाइबल से आगे बढ़कर मानते हैं कि वह वास्तव में उनके उद्धार में सहायता कर सकती है। कुछ का मानना है कि अपनी मृत्यु के बाद से वह कई बार दर्शन दे चुकी है। मैं बाइबल में मरियम के बारे में जो लिखा है उस पर चर्चा करूंगा। मैं मरियम विद्या के संदर्भ में लोगों द्वारा मरियम के बारे में कही गई बातों के इतिहास पर भी बात करूंगा। साथ ही मैं दर्शनों और बाइबल की कुछ भविष्यवाणियों से जुड़ी कुछ चिंताओं पर भी चर्चा करूंगा, जिन पर शायद लोगों ने इस विशेष संदर्भ में विचार नहीं किया है। चलिए अब पुराने नियम में मरियम के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मरियम के बारे में भविष्यवाणी पुराने नियम में ही की गई है। उत्पत्ति अध्याय 3 में हम पद 14 से शुरू करेंगे। यह न्यू किंग जेम्स संस्करण से है, लेकिन कभी कभी मैं अन्य अनुवादों का भी उल्लेख करूंगा। उत्पत्ति 3 के पद 14 में हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह किया है, इसलिए तू सभी पशुओं और मैदान के सभी जानवरों से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा। पद 15, और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर डालूंगा, वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी कुचलेगा। यीशु वह बीज था जिससे सर्प का सिर कुचला गया, और मरियम वह स्त्री थी जिससे अंत यीशु का जन्म हुआ। अब एक और भविष्यवाणी है, यह यशायाह की पुस्तक में है। यशायाह 7 पद 14 से शुरू, इसलिए प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखोगे। यह भविष्यवाणी यीशु और मरियम के बारे में थी। इसके अलावा आइए मीका की पुस्तक देखें। मरियम के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह बेथलहम नामक नगर में होगी। हम इसे मीका 5 के दूसरे पद से पढ़ सकते हैं, परंतु हे बेथलहम एफ्राथा, यद्यपि तू यहूदा के हजारों नगरों में छोटा है, तो भी तुझ में से मेरे लिए वह जन निकलेगा जो इसराइल का शासक होगा, जिसका उद्भव अनादिकाल से अनंत काल से है। पद 3, आथ वह उन्हें तब तक छोड़ देगा जब तक प्रसव पीड़ा से पीड़ित स्त्री जन न दे दे। यह मरियम की भविष्यवाणी है। तब उसके भाइयों में से बचे हुए लोग इसराइलियों के पास लौट आएंगे। इसलिए हालांकि मरियम के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन हमें वे विभिन्न उपाधियां नहीं दिखतीं जो लोगों ने उन्हें दी है और वास्तव में भविष्यवाणी की गई थी। अब कुछ बदलाव आए हैं। कुछ लोग मरियम को ईश्वर की माता कहते हैं। उनका दावा है कि वह शाश्वत कुंवारी थीं, और उनका यह भी दावा है कि उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में ले जाया गया था। हम इनमें से कुछ बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बाइबल में मरियम के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। मरियम के बारे में हमें जो कुछ भी पता है उसका अधिकांश भाग लूका की पुस्तक के पहले अध्याय से आता है। हम 26वें पद से शुरू करेंगे। लूका को यह लिखने की प्रेरणा मिली। छठे महीने में परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को गलील के नासरत नामक नगर में भेजा, जहां दाऊद के वंश के यूसुफ से मंगनी की हुई एक कुंवारी कन्या मरियम के पास उसका नाम था। स्वर्गदूत ने आकर मरियम से कहा, आनंदित हो हे कृपा पात्र, प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है। पद 29, परंतु जब मरियम ने उसे देखा तो वह उसकी बात सुनकर व्याकुल हो गई और सोचने लगी कि यह कैसा अभिवादन है। पद 30, स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत हे मरियम, क्योंकि तू परमेश्वर की कृपा पात्र है। देखो तू अपने गर्भ में पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखेगी। वह महान होगा और परमपिता परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा, और वह याकूब के वंश पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तो उसका यौन संबंध नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? पद 35, स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की शक्ति तुझ पर छा जाएगी, आत जो पवित्र जन जन्म लेगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पद 36, अब तेरी रिश्तेदार एलिजाबेथ ने भी वृद्धावस्था में पुत्र को गर्भ धारण किया है, और बांझ कही जाने वाली स्त्री के लिए यह छठा महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वह कह रहा है, देखो, तुम्हारी एक रिश्तेदार है, उसे गर्भवती नहीं होना चाहिए था, वह इसके लिए बहुत बुरी थी, यह बस हो गया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। श्लोक 38, तब मरियम ने कहा, देखो, मैं यहोवा की दासी हूं, जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो, और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह कुंवारी मरियम का एक साहसिक आस्थापूर्ण कार्य था। उस समय यहूदी समाज में विवाह के बिना संतान होना कतई अस्वीकार्य था। इससे शर्म और उपहास का भाव स्थायी हो जाता था। उदाहरण के लिए, यूहन्ना 8:41 के अनुसार यीशु के जन्म के 30 वर्ष बाद तक भी मरियम को उपहास का सामना करना पड़ सकता था। मरियम जानती थी कि उसका यही हश्र हो सकता है, फिर भी उसने सहमति दी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उसके मंगेतर यूसुफ शायद उसे त्याग देते, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उन्हें ऐसा करने से रोका। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए मत्ती की किताब अध्याय 1 खोलते हैं। यह कई कारणों से महत्वपूर्ण है। श्लोक 18 से शुरू करते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की सगाई यूसुफ से हुई, और उनके एक साथ रहने से पहले ही वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। तब उसके पति यूसुफ, जो एक धर्मी पुरुष था और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहता था, ने उसे गुप्त रूप से त्यागने का मन बनाया। वह सोच रहा है, वह गर्भवती है, मुझसे नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। पद 20, परंतु जब वह इन बातों पर विचार कर रहा था, तभी यहोवा का एक दूत स्वप्न में उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, हे दाऊद के पुत्र यूसुफ, अपनी पत्नी मरियम को अपने साथ लेने से भयभीत न हो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। पद 22, सो यह सब इसलिए हुआ कि जो यहोवा ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो जाए। पद 23, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और फिर मैंने कुछ क्षण पहले यशायाह की वह भविष्यवाणी पढ़ी, यशायाह 7:14। पद 24, तब यूसुफ नींद से जागा। तो यह एक सपना था। कोई कह सकता है, ओह, मुझे विश्वास नहीं होता कि सपने ईश्वर की ओर से आते हैं, ईश्वर सपनों का उपयोग नहीं करता, वह मुझसे इस तरह बात नहीं करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने प्रभु के दूत की आज्ञा का पालन किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया, और जब तक उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म नहीं दिया, तब तक वह उसके साथ नहीं रहा, और उसने उसका नाम यीशु रखा। वैसे रोमन कैथोलिक अनुवाद ड्वायरीम्स बाइबल अनुवाद भी इस बात से सहमत है कि बेटे के जन्म से पहले तक वह उससे परिचित नहीं था। इसमें यह नहीं कहा गया है कि वह कभी परिचित नहीं हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि पद 18 में लिखा है, उनके मिलन से पहले ही वह गर्भवती पाई गई। यह इस बात का प्रबल समर्थन करता है कि अंत वे मिले। पद 25 भी यही कहता है, इसलिए हमें धर्मग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि मरियम कुंवारी रही, लेकिन दो बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो इसके विपरीत निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। अब आइए लूका की किताब पर वापस चलते हैं, अध्याय 1 के पद 39 से शुरू करते हैं। उन दिनों मरियम उठी और जल्दी से यहूदा के एक नगर पहाड़ी क्षेत्र में गई, और जकारियास के घर में प्रवेश करके एलिजाबेथ को प्रणाम किया। ये वही एलिजाबेथ है जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात की थी। और जब एलिजाबेथ ने मरियम का प्रणाम सुना, तो उसके गर्भ में बच्चा उछल पड़ा। यही वह व्यक्ति था जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा जाता है। उसका जन्म अभी नहीं हुआ था, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर उठी और उसने ऊंची आवाज में कहा, धन्य हो तुम स्त्रियों में, और धन्य है तुम्हारे गर्भ का फल। परंतु यह मुझे क्यों प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि सचमुच जैसे ही तुम्हारे प्रणाम की आवाज मेरे कानों में पड़ी, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया, क्योंकि जो बातें प्रभु ने उससे कही थीं वे पूरी होंगी। अब पद 46, मरियम ने कहा, मेरा मन प्रभु की महिमा करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित होती है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीन दशा पर ध्यान दिया है, क्योंकि देखो अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है, और जो उससे डरते हैं उन पर उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपनी भुजा से बल दिखाया है, उसने घमंडियों को उनके मन के भ्रम में तितर बितर कर दिया है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से उतार दिया है और दीनहीनों को ऊंचा किया है। पद 53, उसने भूखों को अच्छी चीजों से भर दिया है और धनी लोगों को खाली हाथ भेज दिया है। उसने अपने सेवक इसराइल की सहायता अपनी दया को याद दिलाते हुए की है, जैसा उसने पूर्वजों अब्राहम और उसकी संतान से सदा के लिए कहा था। पद 56, और मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रही और अपने घर लौट गई। तो मरियम ने विश्वास किया। अब इस पर विचार कीजिए, उसे शायद कोई खास नहीं समझता था। उसकी उम्र से लगता है कि वह शायद किशोरावस्था के आखिरी दौर में थी, और परमेश्वर ने उसे चुना। आप किशोरावस्था के आखिरी दौर में भी एक महिला हो सकती है और परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना रची हो। ध्यान दीजिए, उसने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उसे धन्य कहेंगी, और ऐसा हुआ भी। एक और भविष्यवाणी पूरी हुई, उसने कहा था, और इतिहास में यह आज भी सच हो रहा है। खैर, मैरी न केवल इच्छुक थी बल्कि ईश्वर की सेवा करने का यह अवसर पाकर वह बेहद प्रसन्न भी थी। आशा है कि आप भी ईश्वर की सेवा करने के लिए ईश्वर द्वारा दिए गए किसी भी अवसर का लाभ उठाने में प्रसन्न होंगे। अब आइए लूका के दूसरे अध्याय में चलते हैं और चौथे पद से शुरू करते हैं। यूसुफ गलील से नासरत नगर से निकलकर यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलहम गया, क्योंकि वह दाऊद के वंश का था। तो हमने मीका की उस भविष्यवाणी का जिक्र किया। अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी उसका नाम दर्ज कराने के लिए। ऐसा हुआ कि जब वे वहां थे, मरियम के प्रसव के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। पहौठा शब्द से अन्य पुत्रों का संकेत मिलता है। और उन्होंने उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। पद 8, उसी देश में कुछ चरवाहे खेतों में रहते थे और रात को अपने झुंड की रखवाली करते थे। देखो, प्रभु का एक दूत उनके सामने खड़ा हुआ और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत डर गए। तब दूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशी का शुभ समाचार लाया हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है जो प्रभु मसीह है। और यह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा, तुम एक शिशु को कपड़ों में लिपटा हुआ चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और अचानक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह प्रकट हुआ जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और कह रहे थे, परमेश्वर की महिमा सर्वोच्च में हो और पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों के प्रति सद्भावना हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग में चले गए तो चरवाहों ने आपस में कहा, चलो अब हम बेथलहम जाकर इस घटना को देखें जो घटी है और जिसके बारे में यहोवा ने हमें बताया है। और वे शीघ्रता से चले गए। वे उत्साहित थे और उन्होंने मरियम और यूसुफ को और शिशु को चरनी में लेटा हुआ पाया। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने उस बात को दूर दूर तक फैला दिया जो उन्हें इस शिशु के विषय में बताई गई थी। और जितने लोगों ने इसे सुना वे चरवाहों द्वारा बताई गई बातों पर आश्चर्यचकित हुए। पद 19, परंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में संजोकर रखा और उन पर विचार किया। इसलिए मरियम ने बहुत कम उम्र में ही यह महसूस कर लिया था कि यीशु विशेष है। लूका अध्याय 3 में मरियम की वंशावली दी गई है। आइए मरियम की वंशावली देखें। यह लूका 3:23 है। आप शायद कहेंगे कि अगर आप बहुत सारे धर्मग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन मरियम के बारे में धर्मग्रंथ पढ़ने का एक कारण यह है कि आप जान सके कि बाइबल वास्तव में मरियम के बारे में क्या कहती है, न कि वह जो विभिन्न लोगों ने मरियम के बारे में कही है, क्योंकि हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे। और रोम के चर्च में चल रही विभिन्न घटनाओं के कारण, मेरे विचार से समय के साथ मरियम से संबंधित कुछ बातें हमारे लिए जानना और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम लूका 3 में जाएंगे, श्लोक 23 से शुरू करते हुए। यीशु ने स्वयं लगभग 30 वर्ष की आयु में अपना सेवकाई कार्य आरंभ किया, और ऐसा माना जाता है कि वे यूसुफ के पुत्र थे। वे हेली के पुत्र, मत्तत के पुत्र, लेवी के पुत्र, मेलकी के पुत्र थे, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हम नूह तक पहुँचते हैं, जो लामेक के पुत्र, मेतुसेलाह के पुत्र, हनोक के पुत्र, जारेद के पुत्र, महालालेल के पुत्र, कैनान के पुत्र, एनोश के पुत्र, सेत के पुत्र, आदम के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र थे। तो यहाँ हमारे पास वंशावली है। अब गलातियों अध्याय 4 में पद 4 से शुरू करते हुए प्रेरित पौलुस ने एक रोचक बात जोड़ी, पर जब समय पूरा हो गया तो यह एक विशिष्ट समय है। हमारा मानना है कि इस समय की भविष्यवाणी दानियल की पुस्तक में की गई थी, और कई लोग इस बात से सहमत है। और जैसा कि हम गलातियों अध्याय 4 में देखते हैं, एक समय आ गया था, समय पूरा हो गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो एक स्त्री से जन्मा, तो यह फिर से मरियम का संदर्भ है। व्यवस्था के अधीन जन्मा, ताकि व्यवस्था के अधीन रहने वालों को छुड़ाए और हमें पुत्र होने का अधिकार मिले। तो फिर से हम देखते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने तब भेजा जब समय पूरा हो गया था, मरियम नाम की इस स्त्री से जन्मा। और ध्यान दे कि उद्धार यीशु से आता है, मरियम से नहीं। अब यीशु द्वारा किए गए पहले चमत्कार के बारे में हम जो पढ़ते हैं, वह उनकी माता मरियम के दबाव के कारण हुआ था। हम इसके बारे में यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 पद 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था, और यीशु की माता वहां उपस्थित थीं। यीशु और उनके शिष्य दोनों विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखमधु समाप्त हो गया, तो यीशु की माता ने उनसे कहा, दाखमधु नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, हे स्त्री, इस बात से मेरा क्या लेना देना, मेरा समय अभी नहीं आया है। परंतु उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह जो कुछ तुमसे कहे वही करो। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के रिवाज के अनुसार पत्थर के 6 मदिरापा रखे थे, जिनमें से प्रत्येक में 20 या 30 गैलन पानी आ सकता था। यीशु ने उनसे कहा, मदिरापा से भर दो, और उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। पद 8, फिर उन्होंने उनसे कहा, अब इसमें से थोड़ा पानी निकालो और भोज के स्वामी के पास ले जाओ, और उन्होंने उसे ले लिया। जब भोज के स्वामी ने उस पानी को चखा जो दाखमधु बन गया था, तो वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। भोज के स्वामी ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई आरंभ में उत्तम दाखमधु परोसता है, और जब अतिथि अच्छी तरह पी लेते हैं तब निम्न गुणवत्ता वाली दाखमधु परोसता है। तुमने उत्तम दाखमधु अब तक बचाकर रखा है। यीशु ने गलील के काना में ये चमत्कार आरंभ किए और अपनी महिमा प्रकट की, और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। इसके बाद वह कफरनाउम गए, वह, उनकी माता, उनके भाई और उनके शिष्य, और वे वहां अधिक दिन नहीं ठहरे। तो हम देखते हैं कि मरियम और यीशु एक शादी में गए थे। मरियम ने उस शादी में यीशु पर दबाव डाला, जिसमें वह, उनके भाई और अन्य लोग शामिल हुए थे। जाहिर है वह जानती थी कि यीशु ऐसा कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर उन्हें पूरा यकीन था कि वे ऐसा करेंगे। यह भी ध्यान दे कि इसमें लिखा है कि यीशु के भाई थे। अब आइए मरकुस की पुस्तक के अध्याय 6 के पद 2 से शुरू करते हैं। और जब सप्त का दिन आया, तो उसने आराधनालय में सिखाना शुरू किया। वैसे यह यीशु की आदत थी, न केवल सप्त का पालन करना, बल्कि सप्त के दिन आराधनालय में सिखाना भी। और बहुत से लोग उसे सुनकर चकित हो गए और कहने लगे, इस व्यक्ति को ये सब बातें कहाँ से मिली। जाहिर है यीशु किसी उच्च वर्ग के बहुत धनी परिवार से नहीं थे, जिसने उन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाया हो। और यह कैसी बुद्धि है जो उसे दी गई है कि उसके हाथों से ऐसे चमत्कार होते हैं। पद 3, क्या यह बड़ी नहीं है, मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और साइमन का भाई, और क्या उसकी बहनें यहां हमारे साथ नहीं है। अब इसके अनुसार यीशु के कम से कम 4 भाई और कम से कम 2 बहनें थीं। बहनों के नाम हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते। और शायद उनके कुछ और भाई भी थे जो उपस्थित नहीं थे या जिनका नाम नहीं लिया गया। इसलिए हम कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड में मरियम के शाश्वत कौमारे के विचार को स्वीकार नहीं करते। रोमन कैथोलिक दावा करते हैं कि ये वास्तव में यीशु के चचेरे भाई बहन थे, न कि सगे भाई बहन। या यदि वे सगे भाई बहन थे तो वे वास्तव में यूसुफ के पिछले विवाह से थे, लेकिन बाइबल में इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दावा करता हो कि मरियम कुंवारी रहीं। चूंकि विवाहित जोड़ों के बीच यौन संबंध होना स्वाभाविक है, आप इसके बारे में 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 में पढ़ सकते हैं। यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि मरियम कुंवारी रहीं। नहीं, बाइबल में यूसुफ को इस संबंध में कोई संदेश दिया गया है। यीशु के जन्म तक वह कुंवारी थीं, यह सच था, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं था। मैंने मत्ती में ये अंश पहले ही पढ़ लिए हैं। जो लोग मरियम का अत्यधिक सम्मान करते हैं, वे अक्सर इस बात को समझ नहीं पाते कि वे इस मामले में यीशु के उदाहरण का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी माता का सम्मान किया और अपने माता पिता की आज्ञा मानी, जैसा कि आप लूका 2:51 में पढ़ सकते हैं, और यह 5वीं आज्ञा भी है। कम से कम 2 अवसरों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मरियम का अत्यधिक सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। हम लूका 11:27 खोलेंगे। मैं इसे रीम्स न्यू टेस्टामेंट से पढ़ रहा हूँ। आप इसे न्यू किंग जेम्स संस्करण में भी पा सकते हैं। चलिए रोमन कैथोलिक अनुवाद रीम्स न्यू टेस्टामेंट से पढ़ते हैं। जब यीशु ये बातें कह रहे थे, तभी भीड़ में से एक स्त्री ने ऊंची आवाज में उनसे कहा, धन्य है वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया और वो स्तन जिन्होंने तुझे दूध पिलाया। परंतु उन्होंने कहा, हाँ, बल्कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो असल में यीशु यही कह रहे थे कि उनकी माता होना उतना धन्य नहीं है जितना कि परमेश्वर का वचन सुनना और उस पर अमल करना। और यह बात रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अनुवादों में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए लूका 11:28 में यीशु ने कहा, उससे भी बढ़कर धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और उस पर अमल करते हैं। जब उनका परिवार उनसे मिलने आया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका अनुयायी होना अधिक महत्वपूर्ण है। मैं मैथ्यू 12 में जा रहा हूँ, रीम्स न्यू टेस्टामेंट से 5:46 से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। जब वह भीड़ से बात कर ही रहा था, तभी उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े होकर उससे बात करना चाहते थे, तो फिर ये भाई ही थे। ये दूर के रिश्तेदार या चचेरे भाई बहन नहीं थे। 5:47, और किसी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई बाहर खड़े होकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसने बताने वाले से उत्तर दिया, मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है? और अपने शिष्यों की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो कोई स्वर्ग में रहने वाले मेरे पिता की इच्छा पूरी करेगा, वही मेरा भाई, बहन और माता है। तो यहां हमें कई बातें देखने को मिलती है। सबसे पहले उनके भाई बहन थे और उनकी मां, उन्होंने उन्हें दूसरों से ज्यादा विशेष नहीं माना। उन्होंने कहा कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना उनकी मां होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनकी मां होना ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अगर यीशु अपनी मां को ऊंचा दर्जा देना चाहते तो आप सोचते कि वे कुछ अतिरिक्त बात कहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और न ही ईसाइयों को ऐसा करना चाहिए। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अनुवादों में यही बात सामने आती है। वास्तविकता यह है कि मरियम को उस तरह से ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए जिस तरह से आजकल बहुत से लोग उन्हें ऊंचा दर्जा देते हैं। जब यीशु मर रहे थे, मरियम देख रही थी। चलिए यूहन्ना 19 में चलते हैं। यीशु ने प्रेरित यूहन्ना को मरियम की देखभाल करने के लिए कहा। तो यूहन्ना के सुसमाचार के 19:25 से शुरू करते हैं। अब क्रूस के पास खड़े थे, वास्तव में सही शब्द है स्टाउरोस या सूली, यीशु की माता और उनकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी। जब यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय शिष्य को पास खड़े देखा तो उन्होंने अपनी माता से कहा, हे स्त्री अपने पुत्र को देखो। और उन्होंने शिष्य से कहा, अपनी माता को देखो, और उसी क्षण से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। उनमें से एक यह है कि मैरी के लिए चीजें उस दिशा में जाना अधिक सुरक्षित होता। चलिए प्रेरितों के कार्य अध्याय एक में चलते हैं। क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने स्वयं को प्रकट किया और चले गए, मरियम वहां कुछ मूल प्रेरितों के साथ थीं। तो प्रेरितों के कार्य अध्याय एक पद 12 से शुरू। फिर वे यरूशलेम के पास स्थित जैतून पर्वत से, जो सप्त के दिन की यात्रा के बराबर था, यरूशलेम लौट आए। वहां पहुंचकर वे उस ऊपरी कमरे में गए जहां वे ठहरे हुए थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना और अरुदुई, फिलिप और थोमा, बार्थोलोम्यू और मत्ती, अल्फायस का पुत्र याकूब और साइमन जीलॉट, और याकूब का पुत्र यहूदा, ये सब स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ मिलकर एकमत से प्रार्थना और विनती करते रहे। तो हमें पता है कि यूहन्ना मरियम के साथ है, और फिर से उसे यीशु की माता मरियम कहा गया है। यह बाइबल में वर्णित उपाधि है, बाइबल द्वारा स्वीकृत उपाधि। बाइबल मरियम के लिए इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं देती। यद्यपि बाइबल उसे धन्य कहती है, लेकिन धन्य शब्द का प्रयोग कई लोगों के लिए किया गया है, न कि केवल उसके लिए। यरूशलेम के विनाश से पहले यूहन्ना इफिसुस चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि यूहन्ना मरियम को अपने साथ ले गया था। अन्य कहते हैं कि मरियम की मृत्यु उससे पहले यरूशलेम में हो गई थी, या शायद वह कहीं और चली गई थी। ग्रीको रोमन कैथोलिकों की मरियम के अंतिम जीवन के बारे में कुछ मान्यताएं हैं। एक मान्यता एक जाली और झूठे शीर्षक वाले दस्तावेज पर आधारित है, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु हुई और उसे यरूशलेम में दफनाया गया। यह संभव है कि उसकी मृत्यु यरूशलेम में ही हुई हो, लेकिन जिस दस्तावेज का वे हवाला देते हैं, जिसे ट्रांसिटस मारिया कहा जाता है, वह अपोक्रिफल है, यह नकली है। 9वीं शताब्दी का एक दस्तावेज है जिसमें उल्लेख है कि मरियम यूहन्ना के साथ इफिसुस गई थीं। सदियों तक इस बात को नज़रअंदाज किया गया। हालांकि 19वीं शताब्दी में यह स्थिति बदल गई जब एनी कैथरीन एमेरिच नाम की एक नन ने इफिसुस में मरियम के अंतिम घर का दर्शन होने का दावा किया। उनके दर्शन के कारण एक या अधिक पुरोहित इफिसुस गए और उन्हें उस विवरण से मेल खाता एक घर मिला। अब इफिसुस में एक पुनर्निर्मित इमारत है, जिसे मरियम का वह घर माना जाता है जिसमें वह अपनी मृत्यु तक रहीं। यह भी कहा जाता है कि प्रेरित यूहन्ना भी वहां रहे थे। मेरी पत्नी जॉयस और मैंने उस इमारत का दौरा किया। विभिन्न परंपराओं के अनुसार मरियम इफिसुस में अपनी मृत्यु तक एक विश्वासी थीं, जो गैब्रियल के दर्शन के कई दशकों बाद हुई थी। और हां, उस क्षेत्र के मुस्लिम निवासी आज भी उनका सम्मान करते हैं। इस्लाम में मरियम का एक विशेष स्थान है। अब अधिकांश रोमन कैथोलिक इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मरियम की मृत्यु हुई थी। उनके बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि उनकी मृत्यु कहां हुई थी, इफिसुस में या यहूदिया में। और वास्तव में मैं दोनों स्थानों पर जा चुका हूं, लेकिन उनकी मृत्यु का तथ्य निर्विवाद है। लेकिन मैं बाइबल से मृतकों के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूं। चलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 18 खोलते हैं। मैं इसे रोमन कैथोलिक अनुवाद डुआरिम्स बाइबल से पढ़ रहा हूं। श्लोक 10। तुम में से कोई भी ज्योतिषियों से सलाह न ले, नहीं स्वप्न और शकुनों पर विश्वास करे, नहीं कोई जादूगर हो, नहीं कोई टोटका, नहीं कोई अजगर आत्माओं से सलाह ले, नहीं भविष्यवक्ता हो, नहीं कोई मृतकों से सत्य की खोज करे, क्योंकि यहोवा इन सब बातों से घृणा करता है, और इन घृणित कार्यों के कारण वह तुम्हारे आने पर इन्हें नष्ट कर देगा। या जैसा कि न्यू किंग जेम्स बाइबल में लिखा है, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो जादू टोना करता हो, या मंत्र पढ़ता हो, या मुर्दों को बुलाता हो, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है वह प्रभु के लिए घृणास्पद है। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सभोपदेशक 9:05 पढ़ने जा रहा हूं। पुरानी किंग जेम्स बाइबल से मरे हुए लोग कुछ नहीं जानते, और नई जेरूसलम बाइबल से मरे हुए लोग बिल्कुल कुछ नहीं जानते। फिर भी कई लोग पवित्र धर्म ग्रंथों का उल्लंघन करते हुए मरियम से बात करने या उनसे परामर्श करने का दावा करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मरियम की पूजा तो ईसाई धर्म की शुरुआत से ही चली आ रही है, यह सच नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। भले ही विकिपीडिया जैसी जगह ऐसा कहती हो। और दिलचस्प बात यह है कि विकिपीडिया एक खास किताब का हवाला देता है जिसके बारे में हम कुछ ही मिनटों में बात करेंगे। लेकिन चलिए मरियम के बारे में नए नियम के बाद के सबसे पुराने लेखों में से एक को पढ़ते हैं। यह लेख हिरापोलिस के पापियास द्वारा लिखा गया है। उनका दावा था कि वे प्रेरितों को जानते थे। उन्होंने लिखा, मरियम प्रभु की माता, मरियम क्लियोफास या अल्फायस की पत्नी, जो बिशप और प्रेरित याकूब, साइमन और थडियस और एक यूसुफ की माता थीं, मरियम सलोमी, जेबेदी की पत्नी, जो सुसमाचार प्रचारक यूहन्ना और याकूब की माता थीं, मरियम मगदलीनी। ये चारों सुसमाचार में पाई जाती है। तो मूलतः पापियास का लेखन यह है कि बाइबल में चार मरियमों का उल्लेख है और उनमें से एक को वह प्रभु की माता मरियम कहते हैं। अब मैं कैथोलिक विश्वकोश के उस दावे को पढ़ना चाहता हूं, मरियम जो ईश्वर की कृपा के क्रम में सभी जीवित प्राणियों की माता है। एलिजाबेथ ही वह पहली व्यक्ति थी जिन्होंने मरियम को उनके सबसे सम्मानजनक उपाधि ईश्वर की माता से पुकारा। यहां तक कि प्रारंभिक धर्मगुरुओं ने भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने में संकोच नहीं किया, जैसा कि संत इग्नेशियस के लेखन से देखा जा सकता है। लेकिन यह सच नहीं है। फिर भी ज्यादातर लोगों ने बिना जांच पड़ताल किए इसे स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले एलिजाबेथ ने मरियम को परमेश्वर की माता नहीं कहा। लूका 1:43 में उन्होंने उसे मेरे प्रभु की माता कहा है। और यद्यपि यीशु अब परमेश्वर है, उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए अपनी दिव्यता को त्याग दिया। आप इसे फिलिप्पियों 2:07 के 2 रोमन कैथोलिक अनुवादों से देख सकते हैं। किंग जेम्स और न्यू किंग जेम्स अनुवाद पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन ये रोमन कैथोलिक अनुवाद बिल्कुल सही है। फिलिप्पियों 2:07 ड्वायरीम्स यीशु के बारे में बात करते हुए, उसने स्वयं को खाली कर दिया, एक सेवक का रूप धारण किया, मनुष्यों की समानता में बनाया गया और एक मनुष्य के रूप में पाया गया। अब मैं न्यू जेरूसलम बाइबल से पढ़ने जा रहा हूं, जो रोमन कैथोलिक अनुवाद है। फिलिप्पियों 2:07, उसने अपने आप को दीन कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य के समान हो गया और हर तरह से मनुष्य के समान हो गया। यीशु हमारी तरह मनुष्य बने, वे पुनरुत्थान के बाद ही पूर्णतः ईश्वर बने। मत्ती 28:18। अब दूसरी बात, उनका दावा है कि इग्नाटियस ने मरियम को ईश्वर की माता कहा था। यह सच नहीं है। अब ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इग्नाटियस ने क्या लिखा था, लेकिन मैं वही पढ़ने जा रहा हूं जो इग्नाटियस ने लिखा था। यह इफिसियों को लिखे उनके पत्र से लिया गया है, जो संभवतः 110 के आसपास लिखा गया था, यानी 2 शताब्दी की शुरुआत में, नए नियम के पूरा होने के कुछ ही समय बाद। एक ही चिकित्सक है जो शरीर और आत्मा दोनों से युक्त है, जो सृजित भी है और निर्जित भी, जो शरीर में विद्यमान ईश्वर है, जो मृत्यु में सच्चा जीवन प्रदान करता है, जो मरियम और ईश्वर दोनों का है, जो पहले कष्ट सहने वाला और फिर कष्ट न सहने वाला है, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और फिर उसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा, क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार दाऊद के वंश से मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इग्नेशियस ने वहां मरियम को ईश्वर की माता नहीं कहा। आइए उस पत्र के एक और श्लोक पर गौर करें। मरियम का कौमार्य इस संसार के राजकुमार से छिपा हुआ था, जैसा कि उसकी संतान और प्रभु की मृत्यु भी। ये 3 प्रसिद्ध रहे से ईश्वर द्वारा मौन में रचे गए थे। अब इग्नेशियस का एक और अंश है। मैं इग्नेशियस द्वारा मरियम के बारे में लिखे गए हर अंश को खोजना चाहता था, ताकि यह देख सकूं कि क्या उसमें वही बात लिखी है जो कैथोलिक विश्वकोश में कही गई है। यहां आखिरी अंश है, ट्रेलियनों को लिखे पत्र के अध्याय 9 से, इसलिए जब कोई तुमसे यीशु मसीह के विपरीत बात करे, जो दाऊद के वंशज थे और मरियम से भी थे, जो वास्तव में पैदा हुए थे और उन्होंने खाया पिया था, तो अपने कान बंद कर लो। बस इतना ही। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह ईश्वर की माता थीं। उनके कथनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। अब जहां तक मां की बात है, स्मिर्ना के पॉलीकार्प को प्रेरितों द्वारा पुरोहित नियुक्त किया गया था। रोमन कैथोलिक और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स इसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने यह अभिव्यक्ति प्रयोग की थी, विश्वास हम सबकी माँ है, लेकिन उन्होंने मरियम के बारे में कुछ नहीं कहा। यह गलातियों 4:26 का संदर्भ था। मैं इसे 3 अनुवादों से पढ़कर सुनाऊंगा। गलतियों 4:26 पूर्वी रूढ़िवादी बाइबल, परंतु जो यरूशलेम ऊपर है वह स्वतंत्र है और हम सबकी माता है, अब नए किंग जेम्स बाइबल से, परंतु जो यरूशलेम ऊपर है वह स्वतंत्र है जो हम सबकी माता है, और फिर नए यरूशलेम बाइबल से, परंतु जो यरूशलेम ऊपर है वह स्वतंत्र है, वही हमारी माता है। इसलिए न तो बाइबल और न ही प्रारंभिक ईसाई नेताओं ने मरियम को हमारी माता या कृपा की माता माना, न ही उन्होंने उन्हें ईश्वर की माता कहा। निःसंदेह वह यीशु की माता थीं, और उनका जन्म मनुष्य के रूप में हुआ था। कुछ समय बाद 2री शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारे उत्तराधिकार सूची में शामिल सार्डिस के मेलिटो ने लिखा, जब यह एक पीड़ित के कारण स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और एक कुंवारी के गर्भ से उसी को धारण किया और मनुष्य के रूप में जन्म लिया, इस प्रकार वह मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। उन्होंने अपने सहने में सक्षम शरीर के द्वारा पीड़ित के कष्टों को स्वीकार किया। यही वह है जो कुंवारी माता से मनुष्य बने, जिन्हें वृक्ष पर लटकाया गया, जिन्हें धरती में दफनाया गया, जो मृतकों में से जी उठे और जिन्होंने मानव जाति को कब्र से उठाकर स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही वह मेमना है जिसका वध किया गया। यही वह मेमना है जो मौन रहा। यही वह है जो मरियम से जन्मी, वह सुंदर मेमना। यही वह है जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिन्होंने आदि में मनुष्य की रचना की, जिनका प्रचार व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया जाता है, जो कुंवारी माता से मनुष्य बने, जिन्हें वृक्ष पर लटकाया गया और धरती में दफनाया गया, जो मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग की ऊंचाइयों तक पहुंचे, और जो पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है, जिन्हें न्याय करने और सब कुछ बचाने का अधिकार है, जिनके द्वारा पिता ने जगत के आरंभ से लेकर युग के अंत तक सब कुछ बनाया। 2री शताब्दी के वास्तविक ईसाई ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मरियम की पूजा अर्चना की ओर इशारा करता हो। मुझे पता है कि इरेनियस नाम के एक व्यक्ति ने कुछ लिखना शुरू किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह एक सच्चा ईसाई था, और उसने यीशु के पुनरुत्थान के लगभग 150 साल बाद लिखना शुरू किया था। तथाकथित प्रारंभिक चर्च पिताओं के सभी शुरुआती लेखों का सार यही है कि यीशु मरियम से पैदा हुए थे, एक कुंवारी से जन्मे थे और मनुष्य बने थे। मेलिटो के लेखन के बाद कुछ बदलाव हुए, लेकिन ये बदलाव सच्चे ईसाइयों द्वारा नहीं किए गए थे। 3री शताब्दी का एक भित्तिचित्र है। कैथोलिक विश्वकोश ने पहले इसे 2री शताब्दी का बताया था, लेकिन BBC का कहना है कि यह वास्तव में 3री शताब्दी का है। यह भूमिगत कब्रों में है और इसमें एक चित्र है जिसे कुछ लोग मरियम का चित्र मानते हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह मरियम है या नहीं। इसमें एक महिला को बच्चे को गोद में लिए दिखाया गया है, लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि उस समय मरियम की पूजा अर्चना या सम्मान नहीं किया जाता था। अब यह तथ्य कि मरियम को आरंभ से ही पूजनीय नहीं माना जाता था, भले ही विकिपीडिया में यह गलत जानकारी हो, कैथोलिक विश्वकोश द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। वैसे विकिपीडिया के संदर्भों की बात करें तो मैंने उनमें से एक मैरियोलॉजी पर एक पुस्तक थी जिसे मैंने पहले पढ़ा था। मैंने प्रारंभिक संदर्भों को खोजने के लिए पुस्तक को दोबारा पढ़ा, वे उसमें नहीं है, और मैंने आपको उन स्रोतों से सबसे पुराने संदर्भ पढ़कर सुना दिए हैं। कैथोलिक विश्वकोश इस बात की पुष्टि करता है। अंततः हमारी धन्य माता के प्रति भक्ति को संतों के सहभागिता के सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग माना जाना चाहिए। वैसे संतों के सहभागिता का सिद्धांत कैथोलिक चर्च का मूल विश्वास नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया था, चूंकि यह सिद्धांत कम से कम स्पष्ट रूप से प्रेरितों के पंथ के प्रारंभिक रूपों में निहित नहीं है, इसलिए प्रारंभिक पंथों में भी यह नहीं है। यदि हमें प्रारंभिक ईसाई शताब्दियों में धन्य वर्जिन मैरी की पूजा के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो शायद आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सबसे पुराने धर्मग्रंथ में नहीं है। वास्तव में यह किसी भी धर्मग्रंथ में नहीं है, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि यह ईसाई धर्म के शुरुआती कुछ शताब्दियों, कम से कम 150 शताब्दी में नहीं मिलता। संतों की पूजा के सबसे शुरुआती स्पष्ट उदाहरण, वे इस शब्द का प्रयोग सापेक्षिक अर्थ में करते हैं, उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से जुड़े हैं जिन्होंने आस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसके अलावा यह काफी संभव है कि धार्मिक अनुष्ठानों के द्विपक्षीय चित्रों में धन्य वर्जिन मैरी का उल्लेख नीसिया परिषद से पहले के दिनों से मिलता है। नीसिया परिषद 325 ईस्वी में हुई थी, लेकिन हमारे पास इस बिंदु पर कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, और यही बात प्रत्यक्ष प्रार्थना के किसी भी रूप के बारे में भी कही जा सकती है, यहां तक कि निजी भक्ति के उद्देश्यों के लिए भी। दूसरे शब्दों में कहें तो सीधे सीधे उनका कहना यह है कि निकिया के समय से पहले हमें मरियम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तीसरी शताब्दी में कुछ बातें सामने आने लगती है, लेकिन सच्चे ईसाइयों की ओर से नहीं। इसलिए रोमन कैथोलिक विद्वान मानते हैं कि प्रारंभिक काल में मरियम की आराधना का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। अब जूडा की किताब के तीसरे पद में लिखा है कि हमें उस विश्वास के लिए पूरी लगन से संघर्ष करना चाहिए जो एक बार सभी संतों को सौंपा गया था। मरियमवाद इसका हिस्सा नहीं था। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि मरियम के प्रति यह परम श्रद्धा का भाव पैदा हो गया? दरअसल कई बातें हुईं। उनमें से एक साइमन मागुस था। प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में प्रेरित पत्रस ने उसकी निंदा की है। उसने एक स्त्री की आराधना और पूजा को प्रोत्साहित किया, और दूसरी शताब्दी में उसके बाद कई अन्य धर्मत्यागी नेता आए जिन्होंने यही किया। कुछ लोगों का दावा है कि प्राचीन काल से ही मरियम के दर्शन होते रहे हैं, लेकिन मैं ओहियो के डेटन स्थित मरियम पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय मरियम अनुसंधान संस्थान से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। चर्च के प्रारंभिक शताब्दियों में दर्शनों के बारे में कोई लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है। मरियम के दर्शनों के पहले प्रमाण चौथी शताब्दी से मिलते हैं। उदाहरण के लिए चौथी शताब्दी में रहने वाले निसा के ग्रेगरी ने दर्ज किया है कि तीसरी शताब्दी के मध्य में रहने वाले चमत्कार करने वाले ग्रेगरी मरियम के दर्शन के पहले लाभार्थी थे। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले मैरियन दर्शन देखने वाला व्यक्ति ग्रेगरी द वंडर वर्कर था, लगभग 250 ईस्वी के आसपास। मैं उसके बारे में एंटीनिकेन क्रिश्चियन लाइब्रेरी से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। माना जाता था कि ग्रेगरी को चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त थी जिसका वह लगातार अभ्यास करता था। राक्षस उसके अधीन थे। वह किसी व्यक्ति पर अपना लबादा डालकर उसकी मृत्यु का कारण बन सकता था। वह प्रमुख राक्षसों को उनके मंदिर में वापस ला सकता था। तो यह दिलचस्प है। तीसरी शताब्दी में सच्चे ईसाइयों का पता लगाना कठिन हो गया, और ग्रीको रोमन संघ का उदय हुआ जो आंशिक रूप से एक रहस्यवादी पर आधारित था जिसने एक स्त्री को देखने का दावा किया था। हम आगे चलकर यशाया 47 के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि मरियम के दर्शन मूल प्रेरितिक विश्वास का हिस्सा नहीं थे, और पहले दर्शन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हुए थे जो हत्यारा प्रतीत होता है। उसने किसी पर अपना लबादा फेंककर उसे मार डाला। चमत्कार करने वाले ग्रेगरी ने कई तरह के झूठे सिद्धांत फैलाए, और जाहिर तौर पर वही पहला व्यक्ति था जिसने मरियम के दर्शन होने का दावा किया था। ग्रेगरी ने मैरी के बारे में कुछ इस तरह लिखा था, हे पवित्र कुंवारी, वह अविनाशीता का सदा खिलता हुआ स्वर्ग है। यह कथन निष्कलंक गर्भाधान की शिक्षा की ओर ले जाता है जिसका बाइबल में उल्लेख नहीं है, जिसमें जीवन देने वाला वृक्ष रोपित है और जो सभी को अमरता के फल प्रदान करता है। इस प्रकार पवित्र कुंवारी ने शरीर में रहते हुए भी अविनाशी जीवन को धारण किया। पवित्र कुंवारी ने कुलपतियों की पूर्णता को भी पार कर लिया है। दरअसल बाइबल यह दावा नहीं करती कि मरियम ने निष्कलंक जीवन व्यतीत किया। वास्तव में बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से विमुख हो गए हैं। इसमें मरियम भी शामिल है। अब ग्रेगरी ने यह भी लिखा, जो कोई भी ईश्वर की माता कुंवारी मरियम के जन्म की घोषणा के पर्व को उचित रूप से मनाता है, उसे हे ईश्वर की कृपा पात्रता, तुम्हें प्रणाम संदेश में पूर्ण रुचि प्राप्त होती है। इसलिए इस पर्व को मनाना हमारा कर्तव्य है। वैसे यह पर्व बाइबल में वर्णित नहीं है, क्योंकि इसने पूरे संसार को आनंद और उल्लास से भर दिया है। इसलिए आइए हम इसे भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों के साथ मनाएं। प्राचीन काल में इसराइल भी अपना पर्व मनाता था, परंतु तब वे अखमीरी रोटी और कड़वी जड़ी बूटियों के साथ मनाते थे, जिनके विषय में भविष्यवक्ता कहते हैं, मैं उनके पर्वों को कष्ट और विलाप में और उनके आनंद को लज्जा में बदल दूंगा। परंतु हमारे प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है कि वह पश्चाताप के फलों द्वारा हमारे कष्टों को आनंद में बदल देंगे। ध्यान दें कि ग्रेगरी लोगों को वर्जिन मैरी के उद्घोषणा के त्योहार का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके मैरी के प्रति श्रद्धा की भावना जगाना चाहते थे। कैथोलिक विश्वकोश में छपे लेख में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उन्हें एंटी डिकोमारियनिट्स कहा गया, जो पूर्वी देशों का एक संप्रदाय था और जिसे मरियम के विरोधी कहा जाता था। इस संप्रदाय का मानना था कि यद्यपि प्रभु यीशु मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए थे, फिर भी बाद में यूसुफ और मरियम वैवाहिक संबंध में रहे और उनके अन्य बच्चे भी हुए। जी हां, बाइबल यही कहती है। यह संप्रदाय सदा कुंवारी मरियम की मान्यता को नकारता था। इस संप्रदाय का सबसे पहला उल्लेख टर्टुलियन के लेखन में मिलता है। तो मूलतः रोमन कैथोलिक विद्वान मानते हैं कि चौथी शताब्दी से पहले, यानी जब नाइसिया की परिषद हुई थी, तब तक मरियम की पूजा अर्चना से संबंधित कोई विशेष परंपरा नहीं थी। लेकिन उन्हें संदेह है कि यह परंपरा मौजूद रही होगी। यह एक बड़ा बदलाव है और यह उस आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अब खुद को कैथोलिक कहती है। चौथी शताब्दी में ग्रीको रोमन कैथोलिक बिशप एपिफेनियस ने चेतावनी दी थी कि कुछ लोग मरियम की पूजा कर रहे हैं और इससे संत के प्रति अत्यधिक श्रद्धा पैदा हो रही है। इस प्रकार वे उस चीज की निंदा कर रहे थे जिसे रोमन कैथोलिक अब मरियम की श्रद्धा कहते हैं। और पांचवीं शताब्दी में एक अन्य बिशप ने शिकायत की, यदि मरियम को ईश्वर की माता कहा जाता है तो उन्हें देवी बना दिया जाएगा। फिर भी ईश्वर की माता शब्द का प्रयोग तीसरी शताब्दी के आरंभ में अलेक्जेंड्रिया के एक बिशप अलेक्जेंडर द्वारा शुरू हुआ, जो मिस्र में चर्च के प्रभारी थे। और हां, थियोटोकोस शब्द, जिसका अर्थ है ईश्वर को धारण करने वाली, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स लोग इसका प्रयोग करना पसंद करते हैं। यह ईसाई धर्म से कहीं अधिक पुराना है और इसकी उत्पत्ति मूर्ति पूजा से हुई है। यह जानकारी एक रोमन कैथोलिक द्वारा लिखित मैरियोलॉजी की पुस्तक से ली गई है। हम कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड में यह सिखाते हैं कि मरियम यीशु की माता थीं और यीशु अब ईश्वर है। लेकिन चूंकि मरियम ईश्वरत्व प्रदान नहीं कर सकतीं और यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके अपने ईश्वरत्व को त्याग दिया, फिलिपियो 2:07, और पुनरुत्थान तक उन्हें यह वापस नहीं मिला, इसलिए हम मरियम को ईश्वर को धारण करने वाली या ईश्वर की माता कहकर संबोधित नहीं करते। मरियम विद्या पर लिखी पुस्तक भी यही कहती है। पवित्र शास्त्र में ईश्वर की माता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रोटेस्टेंट विद्वान जेसी हर्लबट ने टिप्पणी की, लगभग 405 ईस्वी के आसपास संतों और शहीदों की मूर्तियां गिरजाघरों में दिखाई देने लगीं, जिनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। वीनस और डायना की पूजा के स्थान पर वर्जिन मैरी की पूजा की जाने लगी। खैर, हम देखते हैं कि यह मूल धर्म का हिस्सा नहीं था। हम यह भी देखते हैं कि चमत्कार करने वाले ग्रेगरी की इसमें कुछ भूमिका थी। वह चाहते थे कि लोग मरियम के जन्म की घोषणा को माने। यह दावा है कि मरियम स्वर्ग गईं, वह जीवित है, मूल रूप से यीशु के दाहिने हाथ पर है, और आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और इस तरह की सभी बातें कर सकते हैं। लेकिन हमें यहां डायना से भी एक संबंध दिखाई देता है। पता चलता है कि डायना के लिए भी उन्हीं तारीखों पर एक उत्सव मनाया जाता था जिन तारीखों पर अब हम मरियम के जन्म की घोषणा का उत्सव मनाते हैं। डायना और मैरी के बीच संबंधों की बात करें तो मैंने फातिमा शौक नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब के पिछले पन्ने पर पुर्तगाल के फातिमा में दिखाई देने वाली उस आकृति का चित्र है। मैं और मेरी पत्नी पुर्तगाल के फातिमा जा चुके हैं। दरअसल यह तस्वीर मेरी पत्नी ने वहां की एक मूर्ति की खींची है, जिसे वे लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वही फातिमा में प्रकट हुई थी। लेकिन वास्तव में फातिमा में जो आकृति प्रकट हुई थी, तीन बच्चों से मिले विवरणों के अनुसार वह देवी डायना जैसी दिखती है। और फिर चमत्कार करने वाले ग्रेगरी लोगों से कह रहे थे कि वे घोषणा उत्सव उसी दिन मनाए जिस दिन मूर्ति पूजक लोग देवी डायना के लिए मनाते थे। मैरी की पूजा करना मूल कैथोलिक चर्च की प्रथा नहीं थी। इसके अलावा पॉलिसियन ईश्वर की माता उपाधि का विरोध करते थे। ये चर्च ऑफ गॉड के लोग थे जो वास्तव में खुद को कैथोलिक कहते थे और रोमन कैथोलिकों को रोमन कहते थे। वे उन्हें ईसाई नहीं मानते थे। उन्होंने ईश्वर की माता उपाधि के साथ साथ शाश्वत कौमारे के दावे का भी विरोध किया। प्रारंभिक शताब्दियों में आधुनिक प्रोटेस्टेंटवाद जैसा कोई चर्च अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि न तो आधुनिक ग्रीको रोमन कैथोलिकवाद और न ही आधुनिक प्रोटेस्टेंटवाद मूल ईसाई चर्च के समान थे। न तो ये समूह और न ही इन समूहों के लोग वास्तव में उस आस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो संतों को एक बार में ही सौंपी गई थी। मेरी बात पर विश्वास न करें। बाइबल कहती है कि सब बातों की जांच करो, जो अच्छा है उसे थामे रहो। खैर, चूंकि पहला पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हम यह नहीं मानते कि मरियम या यीशु और परमपिता परमेश्वर के अलावा कोई और आपकी प्रार्थना सुन सकता है। बाइबल सिखाती है कि यीशु के अलावा सभी ने पाप किया है, इसलिए हम यह नहीं मानते कि मरियम पाप रहित है। बाइबल में यह लिखा है कि हव्वा समस्त मनुष्यों की माता है। हम यह स्वीकार नहीं करते कि मरियम को समस्त ईसाइयों की माता या कृपा की माता या इस तरह की कोई उपाधि दी जा सकती है। यह सच है कि बाइबल में मरियम को धन्य बताया गया है। आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाइबल में अन्य पात्र भी धन्य हैं। रोमन कैथोलिक अक्सर दावा करते हैं कि वे केवल मरियम का आदर करते हैं, उनकी पूजा ईश्वर की तरह नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि वे उनकी पूजा ईश्वर की तरह ही करते हैं। उनकी एक आदरणीय लेखिका मारिया डी एग्रेडा की कुछ बातें यहां दी गई है। स्वर्गीय आत्माओं और परम पूज्य आत्माओं ने प्रभु के प्रति भय और श्रद्धा के साथ आराधना करते हुए उनकी परम पूज्य माता को भी उसी अनुपात में श्रद्धा अर्पित की। जो संत शारीरिक रूप से उपस्थित थे, उन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया और शारीरिक रूप से अपनी आराधना का प्रदर्शन किया। स्वर्ग की साम्राज्ञी के राज्याभिषेक के अवसर पर किए गए इन सभी प्रदर्शनों ने उनकी महिमा, संतों के नए आनंद और उल्लास तथा परम पूज्य त्रिमूर्ति की प्रसन्नता को अद्भुत रूप से बढ़ाया। तो इस आदरणीय व्यक्ति का कहना है कि रोमन कैथोलिक मानते हैं कि सभी संत मरियम के सामने सिर झुकाकर उनकी पूजा करते थे। उन्होंने यह भी लिखा, हमारी रानी का निधन 13 अगस्त को हुआ था, जबकि उनका पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और राज्याभिषेक रविवार 15 अगस्त को हुआ था, जिस दिन चर्च में इसे मनाया जाता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, लेकिन मैं इसे फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। प्राचीन रोमन लोग डायना के लिए 3 दिन का उत्सव मनाते थे। पहला दिन 13 अगस्त था और तीसरे दिन 15 अगस्त को वे डायना के स्वर्गारोहण का जश्न मनाते थे। उन्हें स्वर्ग की रानी घोषित किया गया था। यह वही दिन है जिस दिन रोमन कैथोलिक मैरी का स्वर्गारोहण पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग इसे संयोग नहीं मानते और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन इस सिद्धांत को 1950 में अचूक घोषित कर दिया गया। एक रोमन कैथोलिक लेखक के अनुसार, 1 नवंबर को सेंट पीटर स्क्वायर में भारी भीड़ के सामने पोप पायस 12 ने मैरी के स्वर्गारोहण को एक सिद्धांत के रूप में निश्चित रूप से घोषित किया। इस स्वर्गारोहण का कोई बाइबल आधार नहीं है और यह डायना के स्वर्गारोहण के दिनों में ही पड़ता है। ईश्वर की निष्कलंक माता सदा कुंवारी मरियम ने अपने सांसारिक जीवन की अवधि पूरी करने के बाद शरीर और आत्मा सहित स्वर्गीय महिमा में विलीन हो गई। तो यही घोषणा की गई थी। यह सच नहीं है, लेकिन यह सच है कि ऐसी घोषणा की गई थी। अब मैं कुछ ऐसा पढ़ना चाहता हूं जो मैरी होने का दावा करने वाली इन दिव्य आत्माओं में से किसी एक ने कहा हो। मैं अनुग्रह की महान मध्यस्थ हूं। पिता चाहते हैं कि संसार उनकी दासी को पहचाने। मेरा चिन्ह प्रकट होने वाला है। ऐसा चिन्ह चुनिए जिससे त्रिमूर्ति की आराधना सर्व द्वारा की जा सके। मेरे द्वारा प्रार्थना और बलिदान कीजिए। सच्चे ईसाई मरियम से प्रार्थना और बलिदान नहीं करते। बाइबल और आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 तीमुथियुस 2:05 कहता है कि एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, मनुष्य यीशु मसीह। यह भी डुआइरीम्स ग्रंथ से लिया गया है और डुआइरीम्स ग्रंथ में रोमियो 8:34 में यह भी लिखा है कि यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। यह मरियम की ओर से नहीं है। हमें यह बात यशायाह 53 या इब्रानियों 7 में भी नहीं मिलती। हमें फिर से पता चलता है कि यीशु ही मध्यस्थता करने वाले हैं। बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है और न ही इसका कोई संकेत दिया गया है कि मरियम हमारे लिए मध्यस्थ है। फिर भी मरियम के दर्शनों में से एक ने दावा किया, मेरे बेटे और मैंने कभी पाप नहीं किया। लेकिन रोमियो 3:23 कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं, पद 24, उसकी कृपा से मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं, मरियम की कृपा से नहीं। उस उद्धार के द्वारा जो मसीह यीशु के द्वारा हुआ है, वैसे यह ड्वायरिम्स बाइबल से लिया गया है। बाइबल में जादू टोना करने वाली कुंवारी कन्या के बारे में भी चेतावनी दी गई है। चलिए यशाया 47 खोलते हैं। मैं ड्वायरिम्स बाइबल से श्लोक 1 से पढ़ना शुरू करूंगा। नीचे आओ, धूल में बैठो, हे बाबुल की कुंवारी पुत्री, तो किसी को कुंवारी कहा गया है। जमीन पर बैठो, हे कस्तियों की पुत्री, यहां कोई सिंहासन नहीं है, क्योंकि अब तुझे कोमल और नाजुक नहीं कहा जाएगा। पद 4, हमारा उद्धारकर्ता, सेनाओं का प्रभु, उसका नाम है इसराइल का पवित्र। पद 5, हे कस्तियों की पुत्री, चुपचाप बैठो और अंधेरे में चली जाओ, क्योंकि अब तुझे राज्यों की स्वामिनी नहीं कहा जाएगा, जो कि वैसे मरियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक है। तूने कहा है, मैं सदा एक स्त्री रहूंगी। अब ये बातें सुन, हे कोमल और आत्मविश्वास से भरी हुई, जो अपने हृदय में कहती है, मैं हूं और मेरे सिवा कोई और नहीं है। मैं विधवा बनकर नहीं बैठूंगी और नहीं बांझपन का अनुभव करूंगी। ये दोनों बातें तुझ पर आ पड़ेंगी, तेरे जादू टोने की अधिकता और तेरे जादूगरों की कठोरता के कारण। और सच्चाई यह है कि प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक को महान बाबुल, राज्यों की स्वामिनी, समस्त पृथ्वी की महिमा कहा जाता था। चौथा अजूबा वैसे इफिसियों की डायना थी। बाइबल इस महिला की घमंडी टिप्पणियों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से जोड़ती प्रतीत होती है। और विश्वव्यापी चर्च ऑफ गॉड के नेता हर्बर्ट आर्मस्ट्रांग ने यशाया 47 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबुल की कुंवारी पुत्री एक दूर भविष्य की भविष्यवाणी है, न कि उस समय की जब वे उपदेश दे रहे थे। और आप पाते हैं कि यह प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में पूरा होता है। यह एक धार्मिक संगठन है जो राष्ट्रों पर शासन करता है और इसे दंडित किया जाएगा। बाइबल में इसके बारे में और भी कई अंश हैं। क्या आपको लगता था कि आप हमेशा के लिए रानी रहेंगी? खैर, अभी तो लोग कहते हैं कि मरियम स्वर्ग की रानी है और इस तरह की कई बातें। नहूम की पुस्तक 3:05, नई यरूशलेम बाइबल, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, यहोवा सबाउत कहता है, मैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे चेहरे तक उठा दूंगा और तुम्हारा नग्न रूप राष्ट्रों को दिखा दूंगा। यह प्रकाशित वाक्य 17 में आंशिक रूप से पूरा होता है। इसमें लिखा है, मैं तुम्हें उस महान वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से जल पर बैठी है, और इस अध्याय में आगे 7 पहाड़ियों का उल्लेख है। लेकिन अध्याय 18:7 में लिखा है, तुमने अपने आप को महिमा दी और विलासिता में जीवन व्यतीत किया। तुमने अपने मन में कहा, मैं रानी की तरह बैठी हूं, विधवा नहीं, और मैं शोक नहीं देखूंगी, इसलिए उस पर एक ही दिन में विपत्तियां आएंगी, मृत्यु, मातम और अकाल। यह ड्वायरिम्स बाइबल से है, जो फिर से भविष्यवाणी करती है कि यह स्त्री कहेगी कि वह बिल्कुल ठीक है और उसका नाश हो जाएगा। वैसे बाइबल में मरियम को स्वर्ग की रानी नहीं कहा गया है। और हर्बर्ट आर्मस्ट्रांग के यशाया 47 पर किए गए विश्लेषण पर वापस जाए तो वे यशाया 47 की इस महिला के बारे में बात करते हैं कि वह अब कुंवारी नहीं रही, वह एक वेश्या है और वह सब कुछ खो देती है। तो फिर से इस कुंवारी शब्द को प्रकाशित वाक्य 18 में वर्णित विनाश से जोड़ा जा सकता है। दिवंगत धर्म प्रचारक रेमंड मैकनेये ने भी फातिमा के बारे में बात की थी, जिसमें उन्होंने पोप द्वारा उन्हें शांति की रानी कहने और अन्य उपाधियां देने का जिक्र किया था। और यह गलत है। और सच्चाई यह है कि बहुत से लोग मानते हैं कि अंत के समय में हमें मरियम के संकेत दिखाई देंगे। बाइबल 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:9 से शुरू होकर चेतावनी देती है, अधर्मी का आना शैतान के काम के अनुसार होगा, वह सारी शक्ति, चिन्हों और झूठे चमत्कारों के साथ और नाश होने वालों के बीच अधर्मी छल के साथ आएगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो सके। इसी कारण परमेश्वर उन्हें घोर भ्रम में डालेगा, ताकि वे झूठ पर विश्वास करें और वे दोषी ठहराए जाए जिन्होंने सत्य पर विश्वास नहीं किया बल्कि अधर्म में आनंद लिया। यदि आप चर्च ऑफ गॉड से नहीं जुड़े हैं तो संभवतः आप ग्रीको रोमन कैथोलिक और या प्रोटेस्टेंट धर्म से बहुत प्रभावित हुए हैं और ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो सत्य नहीं है। यही समय है सत्य पर विश्वास करने का। अध्ययन कीजिए, देखिए कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं, क्योंकि वो समय आने वाला है। हमने अभी पढ़ा है कि चमत्कार और अद्भुत घटनाएं होंगी, और मुझे लगता है कि उनमें से कम एक चमत्कार मरियम के दर्शन होंगे जो सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। अब तक लोगों ने जितने भी चमत्कार देखे हैं, उनमें से ज्यादातर कुछ बच्चों या कुछ लोगों ने ही देखे हैं। जब ये बातें सार्वजनिक होंगी तो लोग कहेंगे, अरे ये तो सच है, प्रेरित पौलुस ने कहा था कि विश्वास से चलो न कि देखकर। लेकिन जब लोग इसे देखेंगे तो वे इस पर विश्वास करेंगे। बाइबल अंत समय के बेबीलोन का हिस्सा बनने के बारे में चेतावनी देती है। एक पूर्वी रूढ़िवादी लेखक पीटर जैक्सन ने चेतावनी दी थी कि प्राचीन दुनिया में मातृ देवी का प्रचलन था। कोलंबिया में रहने वाले कोगी आदिवासी प्राचीन माता की पूजा करते थे। पिछली शताब्दी में रोमन कैथोलिक मिशनरी उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने गए। उन्होंने मूर्ति पूजक लोगों को रोम के धर्म में लाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने यीशु और उनके उस छलकारी देवता के बीच समानताएं पाईं जिसने अपनी मृत्यु का नाटक किया था, और उन्होंने उनकी देवी को मरियम से भी जोड़ा। उन्होंने इतिहास में बार बार यही किया है, और हां, मुसलमान भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ मुसलमान मानते हैं कि फातिमा में जो प्रकट हुआ वह मुहम्मद की बेटी फातिमा थी। मैं एक मुसलमान से इस बारे में बहस कर रहा था। कुछ विद्वान तो इसे सच मानते हैं। मैंने उन्हें बच्चों द्वारा देखी गई चीज की तस्वीर दिखाई और कहा, यह देखिए क्या प्रकट हुआ, क्या यह मुहम्मद की बेटी हो सकती है? उन्होंने कहा, नहीं। क्या यह ईसा मसीह की मां मरियम हो सकती है? नहीं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। सच्चाई यह है कि फातिमा में जो तस्वीर दिखाई दी वही उन लोगों के अनुसार है जिन्होंने इसे देखा था, लेकिन लोग इस पर विश्वास करेंगे ही। मरियम की एक झूठी छवि पूरी दुनिया पर थोपी गई है। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स लेखक के इस कथन पर वापस आते हुए, प्रोटेस्टेंट और अन्य लोग किस मरियम की ओर आकर्षित हो रहे हैं? प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन ने मरियम के उस विकृत दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया जो विभाजन के बाद पश्चिम में विकसित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंतर रोमन कैथोलिकों ने निष्कलंक गर्भाधान की घोषणा की। लेकिन प्रोटेस्टेंटवाद ने केवल पश्चिमी दृष्टिकोण को ही अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने मरियम को पूरी तरह से नकार दिया। जैसे जैसे रोम मरियम को एक देवी के रूप में, त्रिमूर्ति के चौथे रूप के रूप में देखने लगा, प्रोटेस्टेंटों ने इसे कम महत्व देना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे जैसे प्रोटेस्टेंट अधिक सर्वधर्म संभाव वाले होते जा रहे हैं और एक विश्व चर्च की ओर बढ़ रहे हैं, अब वे एक अधिक सार्वभौमिक मरियम की तलाश कर रहे हैं जो न केवल ईसाई कहलाने वालों को बल्कि मुसलमानों को भी आकर्षित करे। इसका संबंध निश्चित रूप से एंटीक्राइस्ट से हो सकता है, और यह सच है। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं, वो है हेल मैरी की प्रार्थना के बारे में। मैंने कुछ रोमन कैथोलिकों को यह कहते हुए पढ़ा है कि यह सीधे बाइबल से ली गई है। ऐसा नहीं है। मैं एक रोमन कैथोलिक स्रोत से, डफन नामक एक पादरी से, यह पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। जिस रूप में हम आज प्रार्थना करते हैं, उस रूप में हेल मैरी का अस्तित्व नहीं था। इसमें जीसस शब्द 14वीं शताब्दी तक नहीं जोड़ा गया था, और प्रार्थना का दूसरा भाग तो उसके भी बाद में आया। रोमन कैथोलिकों का मानना है कि हे मेरी कृपा से परिपूर्ण यह वाक्यांश बाइबल से लिया गया है, लेकिन यह शाब्दिक रूप से सही नहीं है। बाइबल का अधिक शाब्दिक अनुवाद है, आनंदित हो हे कृपा के पात्र। इसके अलावा डॉयरीम्स बाइबल, न्यू जेरूसलम बाइबल, न्यू किंग जेम्स बाइबल और अन्य बाइबलों में भी मरियम को पवित्र नहीं कहा गया है, जैसा कि हे मेरी प्रार्थना में कहा गया है। कुछ अन्य लोगों का दावा है कि प्रकाशित वाक्य 12 में वर्णित स्त्री मरियम है। यह मान्यता तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हालांकि कई प्रारंभिक रोमन कैथोलिकों और उनके विद्वानों ने इससे इनकार किया है। यह यीशु की माता मरियम का संदर्भ नहीं है, यह वास्तव में चर्च का संदर्भ है, और यही मत हम निरंतर ईश्वरीय चर्च में भी मानते हैं। मैंने एक रोचक लेख पढ़ा जिसमें कहा गया था कि हाँ, यह सच है कि प्रारंभिक रोमन कैथोलिक लेखकों ने यह नहीं माना कि वह मरियम है, और उनका मानना था कि प्रकाशित वाक्य 12 चर्च के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अब वे मानते हैं कि इसका संबंध मरियम से है। तो यह एक और बदलाव है। यह मूल आस्था का हिस्सा नहीं था। अगर मरियम के दर्शन सार्वजनिक हो जाते हैं तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी प्रोटेस्टेंट धर्म में द चोजन नाम की एक लोकप्रिय श्रृंखला है जिसके कुछ हिस्से काफी दिलचस्प है। हालांकि इसके बाद के संस्करणों पर मरियमवाद का प्रभाव दिखने लगा है। मरियमवाद का इस्तेमाल कई धार्मिक समुदायों द्वारा किया गया है और यह रोमन कैथोलिकों का एक उद्देश्यपूर्ण धार्मिक समन्वय का साधन है। इसलिए अगर कोई मरियम होने का दावा करते हुए प्रकट होता है और यह सार्वजनिक हो जाता है तो इससे बहुत से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन याद रखें, मसीही होने के नाते हमें विश्वास के मार्ग पर चलना चाहिए, न कि देख कर चलने पर। और याद रखें, जो लोग सत्य के प्रति पर्याप्त प्रेम नहीं रखते उनके लिए चमत्कार और झूठे आश्चर्य इस दुनिया में प्रकट होंगे। अब मरियम की बात करते हैं। मरियम एक निष्ठावान यहूदी महिला थीं। परमेश्वर ने उन्हें यीशु को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने के लिए चुना। यह एक बड़ा सम्मान था। यीशु की माता मरियम ने उनके जीवन में वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमेश्वर पिता ने मरियम को यीशु को गर्भ में धारण करने, जन्म देने और उनका पालन पोषण करने के लिए तब तक नहीं चुना होता जब तक उन्हें यह विश्वास न होता कि उनमें यह गुण है। यीशु मरियम को मां की तरह मानते थे, लेकिन स्वर्ग की मां या ऐसी किसी और उपाधि की तरह नहीं। जहां तक हमें पता है, वह भी एक सच्ची ईसाई बन गई। विश्वास में मरने वाले अन्य लोगों की तरह वह भी मृतकों के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रही है। वह अब जीवित नहीं है। आप उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने प्राचीन ईसाई लेखों से उद्धृत किया है, नए नियम के बाद के प्रारंभिक ईसाई लेखकों ने उनका आदर या महिमा मंडन नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि यीशु का जन्म उनसे हुआ था। यह सच है कि साइमन मागुस जैसे शुरुआती धर्मत्यागी एक स्त्री की पूजा करते थे। मरियम उनकी पूजा का केंद्र बिंदु नहीं थीं। मरियम ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ नहीं है। वे हमारी मध्यस्थ भी नहीं है। वह तो केवल यीशु ही है। मरियम विश्वासयोग्य थीं, इसलिए उन्होंने कभी स्वयं को मध्यस्थ या सहोद्धारकर्ता नहीं कहा। ये ईशनिंदा वाले नाम हैं। प्रेरितों के कार्य 10:25-26 में प्रेरित पत्रस की तरह उन्होंने भी लोगों को अपने सामने झुकने से मना किया, जैसा कि मरियम के एक दर्शन में दावा किया गया था। वह स्वयं दर्शनों में प्रकट नहीं होती। हालांकि चूंकि कुछ शैतानी शक्तियों ने स्वयं को मरियम होने का दावा किया है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि भविष्य में मरियम होने का दावा करने वाले कुछ दर्शन सामने आएंगे। मरियम होने का दावा करने वाले ये दर्शन धर्मनिरपेक्ष यूरोप और अन्य जगहों पर कई लोगों को विचारों और कर्मों में अधिक रोमन कैथोलिक बनने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकते हैं। इससे संभवतः यूरोपीय शैतानी शक्ति को एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही मुसलमानों को भी अस्थायी रूप से उनके साथ मिला लिया जाएगा। दर्शन और मरियम की ओर मुड़ना वास्तव में शैतान की योजना का हिस्सा है। मरियमवाद, यानी यह धारणा कि हर किसी को मरियम की पूजा करनी चाहिए या उनकी मूर्ति की आराधना करनी चाहिए, मूर्ति पूजा है। हालांकि मरियम को वास्तव में धन्य कहा जा सकता है, लेकिन जिन चमत्कारों को उनका बताया गया है या जिनका संकेत दिया गया है, वे वास्तव में मरियम नहीं थीं। सच्चे ईसाइयों को बाइबल का पालन करना चाहिए, न कि परंपराओं, संकेतों और झूठे चमत्कारों का। रोमन कैथोलिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कोई मरियम होने का दावा करेगा और वह मरियम नहीं होगी, वह शैतान को इकट्ठा करने में एक भूमिका निभाएगा। इन दर्शनों में वास्तविक मरियम प्रकट नहीं हो सकती थीं। वास्तविक मरियम उन अनेक बातों को कह ही नहीं सकती थीं जिन्हें उनके नाम से प्रकट होने वाले विभिन्न दर्शनों में कहा गया है। अब जैसा कि पता चला है, इस साल मई में वेटिकन ने इन चमत्कारी दर्शनों की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए नए नियम बनाए हैं। मेरा मानना है कि इससे भविष्य में और अधिक चमत्कारी दर्शनों को स्वीकार करने की राह खुल रही है। बाइबल के अनुसार वह समय आ रहा है जब लोग चमत्कारी संकेतों और झूठे चमत्कारों से गुमराह होंगे। इन झूठे चमत्कारों के झांसे में न आए, चाहे आप उन्हें अपनी आंखों से देखें या एक से अधिक धर्मगुरु ऐसा कहें। मसीहियों को विश्वास के द्वारा चलना चाहिए, न कि देखकर। 2 कुरिन्थियों 5:07। हमें बाइबल के अनुसार न होने वाले चमत्कारी संकेतों और झूठे चमत्कारों से ऊपर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, बाइबल मरियम के बारे में बताती है। हाँ, वह विश्वासयोग्य प्रतीत होती है। हाँ, उसने यीशु का पालन पोषण किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। वह अपनी कब्र में है। वह यीशु के लौटने और अन्य विश्वासयोग्य मसीहियों की तरह पुनर्जीवित होने के बाद ही वापस आएगी। मरियम के बारे में उन संकेतों और कहानियों पर विश्वास न करें जो मैंने कही है, उनके विपरीत है। उन्हें आपको गुमराह न करने दे। लेकिन बाइबल चेतावनी देती है कि अधिकांश लोग धोखा खा जाएंगे। यह डॉक्टर बॉब थील है जो कंटिन्यूइंग चर्च ऑफ गॉड की ओर से बोल रहे हैं।